कल की मुरली किस ऊंची नजर से देखते हैं बाबा हमें पूर्वज और पूज्य याद रखनी है ये बात। बाबा जिस ऊंची नजर से हमें देखते हैं, हमें भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखना है। आप देख रहे होंगे बाबा को कल, बहुत सुंदर बात है ना। भगवान स्वयं जो काम आज तक उसका था वो कहता है ये तुम्हारा है। जैसे बाप ने तुम्हारी पालना की शक्तियों से, तुम संसार की पालना करो। इसको जरा ऊंची दृष्टि से देखें, भगवान कहीं बैठकर अपनी सेना को जागृत कर रहा हो तो हम सभी अपनी इस चीज को भूल जाते हैं। जैसे हनुमान के लिए कहा है ना, वो अपनी शक्तियों को भूल गया, उसको सन्यासी का श्राप था। लेकिन जब उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो सन्यासी ने जरा कह दिया कि अच्छा कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो उसको जहां तक याद दिलाया गया, तुम सागर को कूद सकते हो, उसको लगता था मैं इतना नहीं कूद सकता। अब देखो कहानियां कैसी हैं, एक और सागर को कूदने की बात, दूसरा उड़ के जाने की बात, अलग अलग होते हैं ना दोनों। हनुमान उड़ के जा रहा है, कूद नहीं रहा है। कूदने वाला बीच में थोड़ा रुक सकता है कि सुरसा आई और बीच में रुक गया। तो बाबा के सभी बच्चे भी अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं, अपने महत्व को भूले रहते हैं। क्या क्या होमवर्क दिए बाबा ने कल, रिपीट करो और चालू भी किए होंगे, नहीं तो अब जरा ध्यान से चालू करना है। पहला होमवर्क है होमवर्क, खास जिसे होमवर्क कहा, इससे भी पहले वही बात भूल गई है ब्राह्मणों को, और वो भूल ही जाती है, वो बात ही ऐसी सुंदर है। पहला होमवर्क दिया, सकास देने का भी होमवर्क दिया, और कहा अगली बार जब आएंगे तो सकास देने का चार्ट पूछेंगे, वो तो इम्पोर्टेंट काम है ही, परंतु इसी काम को और अच्छा करने के लिए वो दूसरा होमवर्क, दूसरों को आत्मा तो देखते हो, क्या देखो आप ओरिजिनल स्वरूप, क्योंकि हम दूसरों को आत्मा तो देख लें कि ये है तो आत्मा पर है बड़ी खराब, तो आत्मा देखने का फायदा होगा, ये है तो आत्मा पर मुझसे लड़ती है, ये है तो आत्मा पर क्रोध बहुत करती है, तो इस आत्मिक दृष्टि का कोई फायदा नहीं। आत्मिक दृष्टि अर्थात मन को दूसरे के लिए पूरी तरह निर्संकल्प करे, एक श्रेष्ठ भावनाओं के वाइब्रेशंस दूसरों को पहुंचे, एक सुखद फीलिंग एक दूसरे को देखकर हो, इसी को बाबा ने जोड़ा परिवार से। क्या याद दिलाया, परिवार याद है ना, प्यार परिवार से। बहुत अच्छी बात कही, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, ये सब ये भी एक महान बात है, ये बात ही बहुत ऊंची है। दुनिया में भी परिवारों में टकराव है, ब्राह्मणों में भी परिवारों में टकराव हो तो भगवान को लगेगा ना, रावण के बच्चे तो लड़ ही रहे हैं, ये मेरे बच्चे भी लड़ रहे हैं, लगेगा ना उसे कि हर घर घर में तो महाभारत है ही। कई लोग फोन करते हैं मुझे, तो ये शब्द यूज करते हैं, एक आत्मा हमारे घर में, उसने महाभारत कर दिया है हमारे घर में। तो बाबा को लगता है ना, महान आत्माओं का तो आपस में बहुत प्यार हो, इष्ट देव देवियों का तो आपस में बहुत प्यार हो, एक इष्ट देवी दूसरी इष्ट देवी से नफरत करे तो भक्तों का क्या हाल होगा, उनके नफरत के वाइब्रेशंस भक्तों तक भी पहुंच जाएंगे। तो बाबा ये देखना चाहता है मेरे परिवार में संपूर्ण प्यार हो, एकता हो। और इसकी ये विधि बताई, जब एक दूसरे को देखो तो अब के स्वरूप में नहीं, मूल स्वरूप में। कैसे हैं सब मूल स्वरूप में, कैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, केवल रिपीट कर देने से काम नहीं होगा, अब कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम किसी को देखते हैं तो मूल स्वरूप में कैसे हैं सब, बोलो, सब जानते हैं, माताएं बोलेंगी, मूल स्वरूप में कैसे हैं सब, क्या बोला, ज्योति स्वरूप, नहीं, संपूर्ण पवित्र हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, हैं या नहीं, 16 कला संपूर्ण हैं, उनमें कोई कमी नहीं, कैसे हैं, केवल आत्मा है, ज्योति स्वरूप है, ये मूल स्वरूप नहीं, वो तो अब का भी वही है, मूल स्वरूप थोड़ा ही, वो तो सदा का स्वरूप है। मूल स्वरूप माना आत्मा की मूल सारी क्वालिटी उसमें है। जब आत्मा परम धाम में है या सतयुग में जब हम उतरे हैं, जैसे तब थे वैसे एक दूसरे को देखें। कल से जरा प्रैक्टिस करना, 10 बार का लक्ष्य रख लें सभी, किसी को भी देखेंगे तो वो आत्मा है, केवल ये नहीं, ये देव आत्मा है, ये संपूर्ण पवित्र आत्मा है, ये संपूर्ण आत्मा है, संपूर्ण है, संपूर्ण स्वरूप को देखेंगे। एक चित्र बना लें आप उसका अपने मन में, संपूर्ण आत्मा ये है, ऐसी होती है। जैसे देव आत्माओं के चित्र है ना बाजार में मिलते हैं, हमारे मन में भी उनका एक चित्र है जो हमारा ही है, वैसे इस सब की संपूर्ण स्थिति का भी एक चित्र बनाओ। मुझे एक बात याद आ गई, बाबा अपनी झोपड़ी में बैठे थे, ब्रह्मा बाबा, कुछ लोगों ने सुनी होगी, कैलाश बहन जो आजकल गांधीनगर में रहती है, छोटी सी थी वो, तो वो बाबा से, छोटी थी तो बाबा बड़े प्यार करते थे, पढ़ी लिखी थी नहीं, आपने सुना हो मैगजीन में पढ़ा, उसको बाबा ने पढ़ना लिखना सिखाया था वतन से, तो वो ध्यान में भी जाती थी। बाबा ने उसको झोंपड़ी में बैठी, वो आई थी, कहा बच्ची ऊपर जाओ, गई ध्यान में, पूछा किससे मिल के आई, कि वहां बाबा थे, बहुत तेजस्वी थे। बाबा ने पूछा यही था क्या, कि नहीं ये तो नहीं था, वो तो बहुत तेजस्वी था, बहुत चमक थी उसमें। तो फिर 2-4 दिन के बाद फिर वो आई, फिर कहा बच्ची बाबा के पास जाओ और ध्यान से देखना, यही है क्या, यही था क्या। फिर वो ध्यान में गई और उसने आकर बताया कि बाबा था तो यही, उसको पता नहीं था कौन बोल रहा क्या, वो छोटी सी थी, पर वो जो बाबा ऊपर था ना, उसमें तेज और प्रकाश बहुत था, आप में इतना नहीं है। अब वो मनुस्तन में बैठे ब्रह्मा जी वहां, बूढ़े वैसे हैं, तो वो तेज तो निकलता ऐसे दिखाई तो नहीं देगा ना, वहां तो दिखता है ऊपर, यहाँ नहीं दिखता, यहाँ किसी किसी को दिखेगा, ऊपर तो सबको स्पष्ट दिखता है ना वो तेज। तो बाबा ये जानना चाहते थे कि मेरे में और मेरे संपूर्ण स्वरूप में कितना अंतर है, उसे भरना है मुझे तेजी से। हम भी ये विजन बनाए करें, चित्र बनाए करें, हमारे में और हमारे संपूर्ण स्वरूप में कितना अंतर है। उस समय तो ये मान्यता होती थी कि हम सब का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में विद्यमान है, वहाँ है, हमें वैसा बनना है। हम अपने मन की आंखों से, इसको कल्पना शक्ति भी कह सकते हैं, अपने संपूर्ण स्वरूप का चित्र बनाएं जरा। मैं संपूर्ण बनूंगी तो ऐसी होंगी। संसार यदि मुझे संपूर्ण स्वरूप में देखे तो ऐसा देखेगा, ऐसे स्वरूप में अपने को और एक दूसरे को देखने की अभ्यास करेंगे। जरा सबको संपूर्ण बन के जाना है, अपनी अपनी स्थिति अनुसार सब संपूर्ण बनेंगे। अपनी अपनी स्थिति का क्या अर्थ है? कल भी बाबा ने कहा, अपनी अपनी स्थिति का अर्थ है हर आत्मा मूल स्वरूप में, हर आत्मा की डिग्री अलग अलग है। जैसे हमारे पास 10 डब्बे हों दूध रखने के, 1 लीटर का, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक हम सबको भर दे, क्या कहेंगे? हर डब्बा दूध से फुल है। लेकिन जिसमें एक जो 1 लीटर का है उसमें कितना दूध है? 1 लीटर, पर फुल वो भी है। ऐसे ही हर आत्मा की क्षमता, उसकी अनादि योग्यता अलग अलग है, वो फुल हो जाएगी। दस रत्नों की बिल्कुल बाप समान संपूर्ण, 108 की उनसे थोड़ी थोड़ी कम, 80-90 के बीच, 75 से ऊपर ऊपर, बाकी पीछे कम कम कम। जो पीछे अब आत्माएं आ रही हैं, अभी तो आ रही है ना ऊपर से, उनकी बहुत थोड़ा, उनका जो कंटेनर है बहुत छोटा सा है, ऐसा समझे 5-7 डिग्री की आत्मा है वो, सब संपूर्ण होकर जाएंगी। हम एक दूसरे को, आप सभी अपने घर में माताएं भाई, आपके घर में जो बच्चे हैं उनको भी जरा उनके संपूर्ण स्वरूप में देखो, बैठ के सोचना इनको भी अब वापिस चलना है, चलना है या नहीं। ये माताओं को लगता है हमारे बच्चे न जाएं, बाकी सबके भले जाएं, क्या सोचती है माताएं बोलो? जाना है या आपको ले जाना है उन्हें? कुछ आप ही जाएंगे, कुछ को आप ले जाएंगे, ले जाएंगी माताएं? क्या सोचते हैं ये काम बड़ा भारी है, कोई और ले जाए? सोच लेना, सबको जाना है, उन्हें एक दृष्टि से उनके संपूर्ण स्वरूप में देखना, एक प्रैक्टिस ये। दूसरी एक बहुत सुंदर बात फिर से बाबा ने कही, सेवा की सफलता का आधार, उससे भी पहले कुछ कहा नहीं, उससे भी पहले कुछ कहा नहीं, तीन सेवाएं अलग बात। सेवाओं की सफलता का आधार संतुष्टता, ये बात भी ब्राह्मणों से छूटी और भूली रहती है। सेवाओं में स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे को भी संतुष्ट। मान लो एक मेला लगाया जा रहा है, अब उसमें कुछ आत्माएं असंतुष्ट हैं, हमें ये काम क्यों नहीं दिया, हमने इतना पैसा मेले में दिया, हमें क्यों नहीं पूछा गया, मीटिंग हुई हमें बुलाया ही नहीं गया, और भी कई बात, सब चाय पी रहे थे, बहन जी ने मुझे पूछा नहीं, पानी भी नहीं दिया, असंतुष्ट हो गए हैं। सेवा की सफलता पर इसका प्रभाव आएगा। या निमित्त आत्माएं खुद संतुष्ट नहीं है बहुतों से, तो सेवा की सफलता पर इनका प्रभाव आएगा। वो संगठन जहां करने वाले और कराने वाले दोनों संपूर्ण रूप से संतुष्ट हों, सेवा निर्विघ्न भी चलेगी और सफलता संपूर्ण होगी, कम खर्च से, कम मेहनत से। मुझे एक बात और याद आ गई बीच में, आप में से किसी ने सुनी तो वो नहीं होगी, जो सेवा आज तुम धन लगाकर, समय लगाकर, अपनी सारी शक्तियां लगाकर करते हो, वो संपूर्ण सेवा अकेली करेगी तुम्हारी संपूर्ण प्योरिटी। इसको बाबा ने सब दिया था, तुम्हारी प्योरिटी बेस्ट पब्लिसिटी बन जाएगी। धन खर्च, समय खर्च, शक्तियां खर्च, तन भी हम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उस सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो असंतुष्ट रहना ये भी एक तरह की अपवित्रता है, खालीपन है, मनुष्य की इच्छाएं उसको असंतुष्ट बनाती है ना, इच्छाएं बहुत होना खालीपन की निशानी है। तो बहुत ध्यान देंगे, सभी सेवा करते हैं, हम अपने से क्या कर सकते हैं, हम स्वयं संतुष्ट रहें। ठीक है भाई लोग, क्या समझते हैं? हम स्वयं संतुष्ट रहें, हम ये ना सोचे वो भी असंतुष्ट है, वो भी है, हम भी हैं, ये नहीं। हम ये बहुत बड़ा योगदान बाबा के कार्यों में देंगे, हम संतुष्ट रहेंगे। कैसी भी सेवा मिले, कैसा भी कुछ हो, संतुष्ट रहें। हो सकता है? अब बाबा ने तीन तरह की जो सेवा बताई, कौन कौन सी? मनसा द्वारा वाइब्रेशंस देते रहे, बोल द्वारा ज्ञान देना, और बोलो आगे, और कर्म द्वारा क्या भूल गए हैं? कर्म द्वारा क्या, संबंध संपर्क द्वारा क्या क्या? देखो जैसे एक उदाहरण ले ले आप इसको, इसके लिए, और ये बात स्पष्ट हो जाती है। ओम शांति भवन में रोज हजारों लोग आ रहे हैं, एक ग्रुप हमारे पास आ गया, हम उसको समझाने गए हैं, मुख से हम ज्ञान देंगे, साथ ही साथ हमारा चेहरा, हमारा जीवन ऐसा हो जिसका प्रभाव उन पर संपूर्ण रूप से पड़े कि ये अलौकिक मनुष्य हैं, ये ऐसे गाइड नहीं है जैसे वो गाइड बाहर वाले दिखा रहे हैं, भाई यहाँ दिलवाड़ा है, यहाँ चलगढ़ है, हम भी दिखा रहे हैं, ये चित्र ये है, ये चित्र वो है, ये अलौकिक लोग हैं, इनके पास ईश्वरीय शक्ति है, इनके पास पवित्रता है। ये हुई कर्म से, संबंध संपर्क में सेवा, जो हमारे कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उन पर हमारे जीवन का, हमारी स्थिति का, हमारे चेहरों का, हमारी दृष्टि का सुंदर प्रभाव पड़ता हो, और ज्ञान देते हुए यदि हम स्वमान में रहकर उन्हें आत्मा देखते हुए ज्ञान देंगे तो उन्हें सकास भी मिलती रहेगी। देखेंगे तो हम उन्हें जरूर ना, आत्मिक दृष्टि और स्वमान। हम इस संकल्प से दें कि हम पूर्वज हैं, अब ये प्रैक्टिस करेंगे ज्ञान देने में, हम पूर्वज हैं, ये हमारे सब हमारे पास आए हैं। बहुत अच्छी बात थी कल, और धर्मों की आत्माओं को भी आपके पास आकर ये आभास हो ये हमारे हैं, ये नहीं ये तो मुसलमान है, ओ इसका चेहरा नहीं देखना, ये दाढ़ी वाले हैं, इनकी दाढ़ी से तो हमें खराब भाषना आती है, इन्होंने बड़ी गड़बड़ की है भारत के लिए, बहुत खराब खराब किया, ये पाकिस्तानी ऐसे हैं, आतंकवादी भेजते रहते हैं, ये नहीं, हम सबके पूर्वज हैं। वो अपना काम करें, जब वो पाप करना नहीं छोड़ते, आतंकवाद नहीं छोड़ते, तो हम अपनी मान्यताएं क्यों छोड़ेंगे? उनके आतंकवाद को हमारी मिलिट्री पुलिस नष्ट कर ही रही है, उन्हें बढ़ने थोड़ा ही देंगे अब, और जरूर वो तो खुद ही नष्ट हो जाएंगे। एक कहावत है, जो मनुष्य दूसरे के लिए खाई खोदता है उसके लिए कुआं पहले ही तैयार रहता है। जो मनुष्य सांप को दूध पिलाता है, सांप क्या करता है? एक दिन उसको ही डसता है। अब पाकिस्तान ने आतंकवाद को जन्म दिया हुआ है, ये उसे ही नष्ट करेगा पूरी तरह, हमें चिंता की बात नहीं। हम इन सब के पूर्वज हैं, आतंकवादियों के भी, या नहीं, क्या समझते हैं आप? उनके भी हैं या वो हमारी वंशावली से हटाओ उन्हें, वो पत्ते नहीं है? बाबा ने तो पत्तों का भी नाम लिया ना, हमारे ही हैं या वो पत्ते किसी और के हैं? सूख के झड़ जाने तो दूर चले जाएं। हम यदि अपने पूर्वज की स्मृति में रहेंगे, बहुत सुंदर बात थी ये, सबको बांध लेनी है अपनी बुद्धि में। यदि पूर्वज स्वरूप में रहेंगे तो तुमसे सकास स्वतः ही मिलती रहेगी, और यदि तुम सकास देते रहेंगे तो निर्विघ्न स्वतः ही रहेंगे, विघ्न भी नष्ट होते रहेंगे। ये बात बाबा ने पहले भी कही है, यदि सकास देने की सेवा में बिजी हो जाओ तो तुम्हारे जीवन में विघ्न रहेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सकास देने से हमारा पुण्य बहुत बनता है। इतना पुण्य और चीजों से नहीं बनता। देखो पुण्य बहुत तरह के हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य है जो कल भी बाबा ने कहा, कल फिर कहा, तुम्हें तो भक्तों की आवाज सुनाई नहीं देती पर बाप को तो सब सुनाई। मैं सोच रहा था हम सबके कान तो कैसे हो गए, बहरे? किसने बहरे कर दिए? माया ने? नहीं, इन जिन कानों में व्यर्थ बहुत जाता है उन कानों में ये आवाज नहीं जाएगी। अब बाबा तो ऊपर है, वहां तो सब जाता है सीधा सीधा। तो बाबा ये चाहते हैं, कल बाबा ने कहा दुखी आत्माओं में खुशी की लहर फैलाओ। जो बहुत दुखी होता है, टेंशन में होता है, वो जरूर चाहता है कहीं से कुछ मिले। बाबा ने एक और सूक्ष्म बात कही, ये बात आप अंडरलाइन करके अलग से लिख भी लें। संसार की सभी आत्माओं का अब तुम पूर्वजों की ओर आकर्षण भी है। वो आकर्षित हो रही हैं तुम्हारी ओर अब, क्योंकि तुम उनके इष्ट देव देवियां भी हो। तो हम जैसे ही सकास देंगे हमारी सकास तुरंत काम करेगी। हमें ये संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए, हमारा सकास देना अर्थात तुरंत उसका प्रभाव होना। कोई ये न सोचे हम सकास तो दे रहे हैं पर पता नहीं जाती है या नहीं। बाबा ने पीछे कई संदेशों में कहा तुम पूर्वज हो, ग्लोब को सकास दो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ग्लोब, ग्लोब समझती माताएं? विश्व का गोला, गोले बनाते हैं ना आजकल विश्व के, देखा है गोला बना देते हैं, इधर भी बने हुए श्री कृष्ण बैठा है ना गोले पर, ऐसा सामने देखो विश्व का गोला हमारे सामने है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान पूर्वज विश्व कल्याणकारी हूँ। फिर अभ्यास करो भ्रकुटि से, दोनों नैनों से, हाथों से भी चाहो तो कर सकते हो। किरणें निकलकर ग्लोब को जा रही हैं, तो सारे विश्व को हमारी किरणें जाएंगी। और रिटर्न क्या होगा? ये सबसे बड़ा पुण्य हो गया, इसका रिटर्न बहुत जबरदस्त है। मैंने कईयों से अभ्यास कराया, इस बार भी एक दो से कराया है नीचे, जिनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि कोई भी प्रयोग उनको ठीक नहीं कर पा रहा था, बेचैन, परेशान, अशांत, समस्याओं, दुविधाओं में उलझे हुए, निराश। तो मैंने एक का बहुत अच्छा उदाहरण है, अभी तीन दिन पहले ही मैंने उसे कहा तुम ग्लोब को सकास देना हर घंटे में एक बार, हो सके तो दो तीन मिनट एक बार में देना। शाम तक बहुत अच्छी स्थिति हो गई उसकी, क्योंकि इसका रिटर्न पुण्य बहुत जबरदस्त आता है। तो हम इस बात पे ध्यान दें, हमें सकास देने का कार्य बढ़ाना है। बाबा ने भी कहा ना, हाथ भी उठवाया तो बहुतों ने हाथ उठाया था, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग सकास देते हैं, पर झूठ मूठ तो कोई उठाएगा नहीं, उठाया तो देते होंगे चाहे थोड़ा ही दे, तो बहुत अच्छी बात थी। अब बाबा ने कहा और बढ़ाओ। अगली बार जब बाबा आएंगे तो रिजल्ट पूछेंगे सकास। बाबा ने ये भी कहा अपने को भी सकास देनी पड़ेगी और दूसरों को भी। याद है इस बार की शायद पहली मुरली में था ये, ऐसा समय आ रहा है तुम्हें अपने को भी किरणें देनी पड़ेगी और संसार को भी। तो बढ़ाएंगे इसका, हर एक प्लान बनाए अपने पास, कुछ सेवा के लिए ये प्लान बनाए। जो कोर्स कराते हैं वो ऐसा करें कि जिसको कोर्स कराएं उसको सकास भी दें। उस समय सकास न दी जाए तो उसे पहले तीन मिनट बाबा के रूम में बैठ के उस आत्मा के लिए सकास दे दें, तो उसका तेजी से कल्याण होगा। जो भी भाई या बहने यहाँ बैठे हैं कोर्स कराते हो, वो कोर्स में तीनों तरह की सेवा एक साथ करने का संकल्प करें। हमारी अपनी स्थिति ऐसी हो कि स्थिति देखते उसे लगे कि मैं आ गया हूँ अपनों के पास, जहाँ मुझे आना चाहिए था मैं वहाँ पहुँच गया। ये स्वरूप हमारा होगा यदि हम पूज्य स्वरूप, पूज्य माना इष्ट देव देवी और पूर्वज स्वरूप का ज्यादा अभ्यास करेंगे, क्योंकि इष्ट देव देवियों से लोग जुड़े हुए हैं। अब देखो मंदिरों में जाकर अपनी देवी के आगे कितने अपनेपन से, कितने प्यार से, कितने सम्मान से लोग पूजा पाठ करते हैं, सब जानते हैं ना। वो सम्मान अब भी है, हमें वो जानते हो या न जानते हो, जैसे ही वो हमें देखेंगे, अगर हम इस स्वरूप में हैं, मैं पूर्वज हूँ या इष्ट देवी हूँ, तो वही सम्मान, वही फीलिंग उनको हमारे सामने आते ही होने लगेगी, क्योंकि उनके अंदर वो फीलिंग्स बहुत हैं। ध्यान देंगे सभी, यही सेवा वृद्धि का सबसे सुंदर तरीका है। मैं तो ये कहूंगा सेवा में एक पैसा भी खर्च न करें अगर हम लोग, और केवल ऐसी स्थिति द्वारा सेवा करें तो पैसा खर्च करने से 10 गुनी ज्यादा सेवा बिना खर्च किए होने लगेगी। लेकिन ऐसा करने की सामर्थ्य अगर हम अपने पूरे संगठन में भर दें तब, ये हर एक सेंटर के ऊपर बात है, बहनों के निमित्तात्माओं के ऊपर है कि कौन इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो तीनों स्वरूप की सेवा का लक्ष्य बनाएंगे, मैं पूर्वज हूँ, इष्ट देव देवी हूँ, पूज्य हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, ये स्वमान भी साथ लेकर चलेंगे तो जीवन अपना बहुत निर्विघ्न रहेगा। सकास भी देना है और दूसरों को संपूर्ण स्वरूप में देखना भी है। और भी कुछ होमवर्क दिया बाबा ने, याद करो, जिसको और जो कोई अच्छी बात लगी हो मुरली की। हाँ, ब्राह्मणों का कर्तव्य ही है दुआएं देना और लेना, और इसमें बहुत अच्छी बात क्या कही, कोई गुस्सा कर रहा हो, आपको बददुआएं दे रहा हो तो क्या कहा, लेते क्यों हो? क्या ये संभव है कि हम ले नहीं? सोचो, ये बात छोटी नहीं है। कोई हमें परेशान कर रहा हो, हम परेशान हो नहीं, कोई हमें बुरा बोल रहा हो, हम फीलिंग में आए नहीं, दूसरा कुछ भी गलत शब्द बोल रहा हो, उसके शब्द हमारे अंदर जाए नहीं, ये सहज काम तो नहीं है। भगवान के लिए तो सहज है, उन्हें कहा क्यों लेते हो, तुम लेते हो इसलिए आ जाती है, न लो। पर वो स्थूल चीज तो नहीं है ना, जो न लो वो तो आप ही चल जाती है अंदर, कैसे नहीं जाएगी अंदर? कोई आपको गलत गलत शब्द बोल रहा है, देखो जब मनुष्य को कोई दूसरा व्यक्ति गलत शब्द बोलता है तो उसका एक एक शब्द अच्छी तरह याद रहता है, ध्यान से सुनते हैं क्या क्या कहा। भगवान ने जो कहा वो तो बाहर निकलते आधा भूल जाता है, पर जब गलत कोई बोलता है तो एक एक बात अंदर फिट हो जाती है, ये भी कहा था, ये भी कहा था, ये भी कहा था, कैसे नहीं होगा ये। आज मुझे एक बात और याद आई, अभी आज की, एक व्यक्ति मेरे से मिलने आया, मैं जल्दी में तो बहुत था ऊप नीचे, वो बैठा रहा, मैंने कहा भाई आपको क्या बात करनी, कि नहीं सबसे मिल लो फिर मैं मिलता हूँ। 3-4 ग्रुप चले गए, फिर मैंने उसको कहा बताओ क्या बात है, कहा मैं इसी ड्रेस में घर से भाग आया हूँ बाबा से मिलने। मैंने कहा किसने भगा दिया, मेरी पत्नी ने और 2 लड़कियों ने। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई, बहुत दुखी आत्मा, मैं कहाँ जाऊँ अब। मैंने कहा पैसा वैसा कुछ जमा किया? कुछ नहीं किया, सब उनके ऊपर खर्च किया, पर वो मेरा घर जाना और तीनों मेरे से ऐसी लड़ाई करते हैं कि मेरा वहाँ रुकना भी मुश्किल हो जाता है। मैं समझ गया काम तो पूर्व जन्मों का है, इसने भी ऐसा ही किया है उनसे, अब वो बदला लेने आत्माएं आ गई हैं। लेकिन उसको देखकर मुझे लग रहा था बेचारे का क्या जिंदगी है उसकी, अकेला हो गया। कहा ज्ञान हम चारों ने लिया था, 2000 तक सब बहुत अच्छी तरह चले, फिर ऐसी लड़ाई शुरू की कि बाबा भी छूटा। अब मुझे सब याद तो था इसलिए मैं बाबा के पास भाग के आ गया। अब देखो लक्की उसको वहाँ प्रवेश भी मिल गया, जगह भी मिल गई बिना टीचर के बिना किसी के, और बाबा मिल गए। तो मैं कहा चलो अब तुम लक्की तो हो, अब छोड़ दो उन्हें। मैंने पूछा घर कहाँ है, बताया यूपी में बॉम्बे में रहते हैं। मैंने कहा घर चले जाओ, क्यों वहीं आ जाएंगी। इतना भयभीत था ये व्यक्ति। मैंने कहा तुम इंदौर में रहते, इंदौर में रहते हो, घर यूपी में, इंदौर में। मैंने कहा नौकरी कर लो, दूसरी जगह रहने लगो, क्यों उन्हें पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ, वहीं आ जाएंगी, मुझे निकाल देंगी। पूर्व जन्मों के पाप कर्म भी मनुष्य को भयभीत करते हैं। मैं रोज बहुत सारी बातें देखकर लोगों की, मुझे वैसे आवाज तो नहीं सुनती कि कोई सवेरे सवेरे या नींद में सुनती हो, पर प्रैक्टिकल दुखों की आवाज बहुत सुनती है। मैं सोचता हूँ मुझे तो और सुनने की जरूरत नहीं, इतने लोग दुखी मिलते हैं कि समझ में आता है। मैं सोचा करता हूँ जब मनुष्य पाप करता है तब वो कुछ नहीं सोचता, बड़ा आनंदित रहता है, उसके 10 लाख ले लिए, अब देने नहीं है, मौज करनी है। लेकिन जब वो देने पड़ते हैं तब जो दुर्गति होती है, मनुष्य दूसरे को सताता है बुरा बुरा बोलकर, वो भूल जाता है कि इसका रिटर्न भी होगा। जब उस पर आती है तो पता चलता है कि क्या क्या हाल मनुष्य का होता है। भटकती आत्माओं का प्रभाव भी बहुत बढ़ता जा रहा है, और उसका एक ही कारण है कि आत्माएं बहुत कमजोर हो गई हैं, तुरंत वो आ जाती हैं। मैं आप सबको ये भी कहूंगा कि इन भटकती आत्माओं को अलग से आप सकाश न दें। कई कई लोग सकाश देते हैं ना भटकती आत्मा। एक बहन जी अपने को बड़ी बहादुर समझती थी, रोज छत पे जाके आत्माओं का आह्वान करे और सकाश दे। आनंद तो उसे बड़ा आया, लेकिन थोड़े दिन में उसको दिखने लगा बहुत सारे भूत प्रेत आने लगे उसके पास, अब उसे डर लगने लगा। मुझे बताया, ये बात पिछले साल की है, मैंने कहा तुम सारे विश्व को सकाश दो ना, भूतों का कल्याण हम कर देंगे, आप छोड़ दो इसको, भूतनाथ बैठा है ऊपर, वो करेगा इनका कल्याण। तो हमें सारे ग्लोब को सकाश देनी है। दुआएं, बददुआएं हम न लें, ये ताकत भी हमारे पास तब आएगी जब हम ज्यादा दुआएं देंगे और अपने मस्तिष्क को, मैं मस्तिष्क शब्द बोल रहा हूँ, मन बुद्धि को श्रेष्ठ स्वमान से भरपूर रखेंगे। तो भरपूर जब हम रहते हैं ना, तो ये चीजें खाली नहीं है, जगह आती नहीं, आ भी गई तो बहुत हल्का लगेगा, चली जाएगी, उसका इफेक्ट लंबा समय नहीं होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एक चीज हम और कर सकते हैं, जो कल बाबा ने एक शब्द बोला, ये भक्त क्या कहते हैं अपने इष्ट देवों को, हे क्षमा के सागर हमें शांति दो, क्षमा करो ये भी कहते हैं ना। हम ऐसी आत्माओं को जो हमें बद्दुआएं दें क्षमा कर दिया करें। हमारे पास क्षमा करने का गुण तो है, शक्ति और होनी चाहिए, गुण है सब में, हम क्षमा कर सकते हैं। उसके लिए हमें सामर्थ्य की और जरूरत है, शक्ति भी हमारे अंदर आ जाए, तो इसके लिए स्वमान का हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। तो ये बाबा ने बहुत अच्छा बोला, तीन पर भी काटने थे, कौन से तीन पर काटने को कहा, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। तीन पर काटो और कौन सा पर साथ रखो, पर उपकार, परोपकारी हैं हम, ये भी हमारा स्वभाव है। बाबा ने ऐसा ही कुछ शब्द बोला ना, मुझे याद नहीं आ रहा, तुम्हारा ये भी स्वभाव है, नेचर है परोपकार करना, है या नहीं, विश्व कल्याण करना, किसी का बुरा करना, ये मान आत्माओं का स्वभाव होता ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कोई हमारा बुरा कर भी जाए तो भी हमारा स्वभाव तो यही है कि हम उनका भला करें। अगर हम उनका बुरा कर देते हैं तो क्या होता है? हमारा स्वभाव है सबका कल्याण करना, पर मान लो कोई हमारा बुरा कर रहा है और बदले में हम भी उनका बुरा कर दें, क्या हो जाएगा? हमें एक विशेष तरह की टेंशन, क्योंकि हमने अपने स्वभाव के विरुद्ध काम कर दिया। हमारी आंतरिक चेतना स्वीकार नहीं करेगी कि तुम भी बुरा करो। हमारी आंतरिक चेतना हमें कहेगी, नहीं, तुम महान हो, तुम्हें सबके लिए अच्छा ही करना है। ठीक है या नहीं? ये बात कहेगी ना हमारी आंतरिक चेतना, भले हमें गुस्सा भी आए कि इसके साथ ऐसा ही करेंगे, परंतु हमारा जो नेचुरल संस्कार है वो हमें ऐसा करने नहीं देगा। इसलिए ये फीलिंग भी अपने अंदर भर लें कि मुझ महान आत्मा का स्वभाव ही है परोपकार करना। तो ये संस्कार, ये अंतर मन में भरा गया विचार हमें परोपकार के अलावा कुछ नहीं करने देगा, और ये बात बहुत काम आएगी। बाबा इशारे में कल बोल रहे थे, भविष्य प्रारब्ध का संबंध बहुत चीजों से है, तुम्हारे शब्दों से भी है, हर कर्म से है, हर संकल्प से है, ऐसे ही हमारे इन संस्कारों से भी है। जिनके अंदर दातापन के संस्कार भर गए, जिनके अंदर पालना करने के संस्कार भर गए, वो राजा बनेंगे, और जब राजा नहीं होंगे तो अपने परिवारों की बहुत अच्छी पालना करेंगे, समाज की बहुत अच्छी पालना करेंगे, देते रहेंगे, और जो देता है उसको कमी नहीं होती, या देने वाले खाली हो जाते हैं। क्या विचार है भाइयों का? देने वाले खाली हो जाते हैं या बढ़ता जाता है? देखे देखो, जो नहीं देते हैं, जो नहीं देते वो देखे देखो, देते ही डबल आ जाएगा, फिर डबल दोगे तो चार गुना आ जाएगा, अनुभव करके देखें। तो हमारे संस्कार स्वभाव हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, 84 जन्मों का। हम इस पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से बचें। जब मैं माताओं को देखता हूँ, मुझे एक संकल्प और आता है। कई बार शंकर पार्टी वाली माताएं माताओं के पास आ जाती हैं, तुम्हारे पास से बाबा नहीं आता, हमारे पास आता है, चलो, और भोली भोली माताएं तुरंत चल देती हैं। मैं माताओं को देख के सोचता हूँ इन्हें समझा दिया जाए। इस संसार में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, किसी के तन में प्रवेश करके कह देती हैं मैं शिव बाबा हूँ, और भोले लोग मान लेते हैं इनके तन में शिव बाबा आ रहा है, चलो मधुबन जाने की क्या जरूरत खर्च करने की, इधर ही शिव बाबा से मिल लेते हैं। जो बुद्धिमान हैं, जिनके पास सुंदर दृष्टि है, वो कल देख सकते थे ना, भगवान के सिवाय ये बातें कोई कर सकता है? जरा उस दृष्टि से देखो कल की मुरली को, कल के उस सारे कार्यक्रम को, कि क्या भगवान के सिवाय ये बातें कोई कह सकता है? वो वाइब्रेशन से नहीं हो सकते। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। पिछले ग्रुप में एक डॉक्टर मेरे पास आया। डॉक्टर ने बैठते ही कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। अब मैं सोचा है, भाई है, ये भाषा बोल रहा बहनों की। मैंने कहा, क्या कहा? कहा, मैं माया हूँ, इस तन में आई हूँ, एक साल से इसके तन में रहती हूँ, मैंने आपका एक जगह भाषण सुना था, मेरी बहुत इच्छा थी मैं आपसे मिलूं, मैं आपके पास आई हूँ मिलने। मैंने कहा, कौन तुम? कि मैंने एक साल से इस डॉक्टर के तन में प्रवेश किया हुआ है। मैं आपको एक बात और बता दूं, वो आत्मा एक साल से उसके तन में रहती है। कहा, एक बात और बता दूं, मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने कहा, क्या गलती? कि मैंने आते ही कहा था, तुम श्री कृष्ण हो, मैं शिव बाबा हूँ, दोनों साथ रहेंगे। ये खुश हो गया, शिव बाबा मेरे तन में आने लगा, ब्रह्मा को छोड़ दिया शायद। कहा, ये मेरे से गलती हो गई थी, मैं आपको बताने आई हूँ। तब मुझे ख्याल आ, कितने लोग, कितनी भटकती आत्माएं भोली भोली माताओं को बहका देती है शिव बाबा आ गया है। माताओं को ही नहीं, भाइयों को भी। भाई है ना, सोचे भाई नहीं बहकते, बहुत बहकते हैं। फिर मैंने उसको योग सिखा दिया, ऐसे योग करो तो मुक्त हो जाओगी। मैंने उसे समझाया दूसरे के घर में रहने से कभी सुख मिलता है क्या, तुम तो दूसरे के घर में रहती हो। कहा बात तो ठीक है पर क्या करूं, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसके साथ रहना। फिर दूसरी बात कही कि मैंने इसको शुरू में बहुत तंग भी किया, फिर मैंने तंग करना छोड़ दिया, बहुत अच्छा है डॉक्टर, अब मैं इसे मदद करती हूँ। बात हो गई, मैंने कहा मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मुझे इस डॉक्टर से बात करनी है, तुम कराओगी? तो बिल्कुल उसने आंखें बंद की और ऐसे झटका सा लगा, और डॉक्टर, मैंने कहा तुम कौन? मैं डॉक्टर प्रमोद। मैंने कहा बताओ। कहा भाई ये आत्मा एक साल से मेरे तन में रहती है, जाती नहीं, तुम कुछ करो ये मेरे तन से चल जाए, मुझे अब तंग तो नहीं करती, मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में मदद भी करती है, फिर भी मैं अपना पुरुषार्थ तो नहीं कर पाता हूँ। तो देखो ऐसे ऐसे बहुत आत्माएं, एक और आई इस बार भी ऐसी एक के तन में, ये ऐसी थी कि ये बात न करे, तो ऐसा कहीं भी बहकना नहीं है। कल मैं सोच रहा था कि संगर पार्टी वाले भी कहते हैं हमारे पास आता है, मैं उनसे पूछा करता हूँ तुम्हारे पास आता है तो मुरली हमारी क्यों पढ़ते हो, तुम्हारी मुरली कहाँ है, मुरली लाओ फिर मेरे से बात करना। तो ऐसे बहकाने वाले बहुत लोग संसार में जो खुद भटक रहे हैं दूसरों को भी भटकाते हैं, कोई भटके नहीं। मेरे पास शंकर पार्टी से वापिस आई हुई कई माताएं भी आई पिछले साल, 25-25 साल से जो उधर थी, जब शंकर पार्टी शुरू हुई थी तब चली गई थी। कहा हमारा सारा जीवन बर्बाद हो गया। एक माता मेरे पीछे पीछे घूम रही पूना की, अरे मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है तुम मेरे पीछे पीछे हो सदा, ये बात करो जरा सी बात करो। मैंने कहा क्या, कि ऐसे ऐसे हुई है, अब मैं फिर आई हूँ बाबा के पास, मेरा जीवन खराब हो गया, मैं बहक गई, मैं देखती भी थी वहाँ कुछ नहीं है फिर भी निकल नहीं सकती थी। मैंने कहा चलो अब आ गई सो आ गई, अब जो मिल सकता है अब तो ले लो। तो वहाँ सभी का हाल यही है, इसलिए कोई भी भटकेगा नहीं। मैं बहुतों की इच्छा होती है, ये बाबा को तो देख लिया, अब शंकर को भी देखा है कैसा है वो, शंकर विनाशकारी होता है, ध्यान रखना है सदा, अपना विनाश करना हो तो देखने जाना, इसलिए बच के रहना इन सब बातों से। हम सभी महान हैं, हमें सबको सकाश देनी है, ग्लोब को सकाश देंगे रोज कम से कम 10 बार। ओम शांति।